था,
समस्त बंधनों से मुक्त, अभी ही होने पर भी पुरुक्रमे महान साहसिक में कुर्वन्ती करते हैं अहेतु किम अनन्य अमिश्री भक्ति भक्ति इत्थं भूत ऐसे आश्चर्यमय गुणः गुण हरि हरि के श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अनंत विशद रूप में की है। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है जो इस प्रमाण है, इस प्रकार है, आत्माराम मुनय निर्ग्रंथ अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति इत्थं भूत गुण हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय है जो इस प्रकार है, ब्रह्म शरीर मन प्रयत्न सहिष्णुता बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। मुनय शब्द का प्रयोग इन अर्थ में होता है जो विचारवान है, जो गंभीर है, शांत है, तपस्वी है, जो हठ है, परिव्राजक है, ऋषि है तथा साधु संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है, जो अविद्या से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथ वेद दर्शन विज्ञान तत्वज्ञान आदि वर्णित विधि विधानों के पालन करने की विवशता नहीं। दूसरे शब्दों में मूर्ख अशिक्षित बदमाश आदि जिन्हें विधि विधान से संबंध नहीं होता, पूंजीपति तथा निर्धन भी। शब्दकोश के अनुसार नी उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता गणना निर्माण तथा निषेध के लिए होता है और ग्रंथ शब्द धन पुस्तक शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इतना ही पढ़ें। श्लोक को सुत गोस्वामी बोल रहे हैं। सुत गोस्वामी इस श्लोक को नैमिषारण्य धाम में बोल रहे हैं। नैमिषारण्य धाम भारत में लखनऊ के पास गोदावरी के तट पर है। लखनऊ शहर जो है उत्तर मध्य प्रदेश में, उससे 50 किलोमीटर पूर्वी तरफ हम जाएंगे तो नैमिषारण्य। नैमिषारण्य भगवान की तीर्थ यात्राओं में प्रमुख माना जाता है। जैसे युद्ध का निर्णय महाभारत में हुआ तो कहाँ पर युद्ध करें इसकी मीटिंग हुई कौरव और पांडव के बीच। इतना बड़ा लैंड जगह चाहिए तो चुनाव हुआ कि कहाँ करें। यहाँ भावनगर में भी आए थे लेकिन नहीं लगे, यहाँ नहीं कहे, बोले यहाँ हम लोग चले जाएंगे फिर कलयुग में आने वाले लोग करेंगे, हमको यहाँ नहीं करना। यहाँ भी आए थे क्योंकि भारत में सब जगह गए थे तो यहाँ भी आए ही होंगे कि कहाँ युद्ध करें। फिर चुनाव हुआ कि कुरुक्षेत्र में किया जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य करना होता है तो कार्य की सफलता के लिए स्थान का चुनाव करना चाहिए कि इस स्थान में हमें कम समय में ज्यादा फल मिल सकता है। किसी को डायमंड बिजनेस करना है तो डायमंड मार्केट में जाएगा तो अच्छा होगा, फिर वो लोखंड बाजार में जाएगा तो क्या करेगा। दो स्थान जिसके लिए है, जिसको किसी को खेती करना है और वो राजस्थान में चला जाए रण प्रदेश में, क्या करे। किसी भी वस्तु में स्थान की अपेक्षा होती है ना। युद्ध करना है तो ऐसा स्थान ढूंढा जो परम साथ दे। और तो पढ़ा गया वेद पुराण, इतिहास को खोला तो निर्णय हुआ कि धर्म क्षेत्र यह है। और धर्म युद्ध था तो धर्म क्षेत्र, और यहां पर जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, वो भूमि का प्रभाव है। क्योंकि इंद्रदेव ने वरदान दिया था कुरु महाराज को कि इस भूमि में जो मरे उसको आपको स्वर्ग ले जाना है। बोले उसने पाप किया हो तो भी ले जाए, यहाँ मरेगा तो आपको स्वर्ग लेना। तो ये धर्म का क्षेत्र था तो धर्म युद्ध था, इसलिए यही भूमि सही। तो दूसरा मरेंगे तो सही सामने वाले या इस पर, लेकिन मरेंगे तो स्वर्ग तो पाएंगे, भूमि से कोटि गुना सुख स्वर्ग में है। गीता में भगवान कहते तेतम स्वर्ग सुख विशालम, बड़ा सुख है स्वर्ग, अमृत है, अप्सराय है, सोना चांदी, कोई सर के लोगों को कोई काम धंधा नहीं है। उसको ऐसा नहीं कि 7 बजे उठ के ऑफिस खोलना है तो, लेकिन कोई काम। स्वर्ग में एक नदी बहती है, उस नदी में आप जो भी चाहिए वो मिलता है, सोने के हार बहते रहते, कुर्सी टेबल फर्नीचर सब जो उठाया ले लो, नहीं चाहिए फेंक दो, बहता रहता। बह के कहाँ जाता है ये हम ढूंढ रहे हैं। अगर इसको करना कि स्वर्ग में एक नदी बहता है, उस नदी में सब बहता रहता है, जल नहीं बहता, सब वस्तुएं बहती है अलग अलग, चलो काम में लेते वही न रख दे। शरीर में पसीना नहीं निकलता, देवताओं के शरीर में पसीना नहीं निकलता, काम करने की भी जरूरत है फिर भी वो करते हैं। बड़ा सुंदर सुख है, और जो भी इच्छा करे पदार्थ उसके सामने प्रकट हो जाता है देवताओं के। स्वर्ग में टॉयलेट भी नहीं है, तो कोई भी घर हो तो पहले वो देखना पड़ता है कि नहीं, नहीं तो करिए। मतलब इस दुनिया में दिखाया गया है कि त्याग का भी महत्व है, त्याग ना करे तो ऐसे ही सब में त्याग, फिर धन में भी त्याग, सब में त्याग होना चाहिए, सिखा रहा है शायद, इसलिए पृथ्वी पर इसकी जरूरत ज्यादा है। स्वर्ग में नहीं है टाइम, वर्णन नहीं है कहीं। वहां की स्त्रियां स्वाभाविक सुंदर है, वहां कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, अपने आप सब स्वाभाविक सौंदर्य, स्वाभाविक सुख है इस पृथ्वी से कोटि गुना। तो बोले कुरुक्षेत्र में मरेंगे तो कम से कम स्वर्ग जाएंगे, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़ा यज्ञ दान तप पूजा उपासना करनी पड़ती है, फिर भी पीछे वाले लिखते हैं स्वर्गवासी, जाएगा नहीं वो स्वर्ग में, लेकिन लिखना पड़ता है। निर्णय किया कि अच्छा स्वर्ग मिल रहा है तो वही भूमि थी। उसी प्रकार कलयुग का प्रारंभ हुआ और द्वापर युग समाप्त हुआ तो कलयुग में पाप ताप क्रोध हिंसा आदि दोष वृद्धि प्राप्त करने लगे। तो भारतवर्ष के और त्रिभुवन के सभी ऋषि मुनियों ने मीटिंग किया कि इस कलयुग को रोकना है, इस कलयुग के जो प्रभाव है उसको मानस के चित पर ना आए, इसके लिए कुछ करे। बोले क्या करे, यज्ञ करना, क्योंकि भगवान यज्ञ पुरुष को पसंद करेंगे, प्रसन्न कर लेंगे विष्णु को, तो उनकी कृपा के बल से हम कलयुग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी हमको भारत में पृथ्वी पर यज्ञ करना, भारत मतलब पृथ्वी, पहले आज जो भारत दिखता है पृथ्वी के नक्शे में उतना ही नहीं था, पूरा पृथ्वी भारत था, थोड़ा बचा है इतना, भारत वर्ष मतलब पूरा पृथ्वी था। जैसे परीक्षित राजा थे तो केवल इतने भारत के नहीं थे, कल उनका था, सातों द्वीप 7 समुद्र है ना, अरे और आप लोग देखेंगे इस बार भी सब पूरा समुद्र भी और भूमि भी सब भारत वर्ष। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र प्रकट किया और कहा कि ये चक्र मैंने मंत्र से निर्माण किया है, और ये चक्र घूमता हुआ जिस भूमि में पड़ जाए बैठ जाए वह भूमि सबसे पवित्र है, और वहां पर यज्ञ करिए तो यज्ञ का फल तुरंत आपको प्राप्त होगा। पूरे भारत वर्ष में उस सुमती गोमती नदी के तट पर आज नैमिषारण्य है बड़ा, वहां पर वो चक्र जो होता है, वो चक्र समझते ना उसको होता है, नैमि मतलब आरा गुजराती में धारो, वो नैमि उस भूमि में जाकर गड़ गया, अंदर चला गया। अंदर जाने से वो जो नेम ही है, वो चक्र का जो आ रहा था धार, वो शीर्ण, शीर्ण माने टूट गया। इसलिए उस क्षेत्र का नेमी, नेमी मतलब एकदम जो तीक्ष्ण धार, जिसको नेमी मतलब क्या था, नेमी, वो जहां पर टूट गया, शीर्ण हो गया उस स्थान का, नेमी जहां पर शीर्ण हो गया चक्र का, इसलिए नाम पड़ा नेमी। अरण्य माने वन, वहां सुंदर जल वन था, इसलिए पूरा नाम पड़ा। तब ऋषि चक्र के पीछे भाग रहे थे, जैसे तब चक्र के पीछे ही भाग रहे थे सब ऋषि, वहीं पर उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। कितने ऋषि थे यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए, कितने ऋषि थे? 88,000। अभी कितना 88,000 मतलब कितने होते हैं जानते हैं ना? होता है तो आपने देखा होगा, वहां पर 1,00,000 व्यक्ति हो तो कितना जाते, और 1,00,000 होते तो क्या करते, बगड़ा सटी गुजराती में 1,00,000 जहां पर हो तो 1,00,000 व्यक्ति, 88,000 ऋषि, और वो सब यज्ञ करेंगे, तो एक के लिए एक हवन कुंड, तो 88,000 हवन कुंड के लिए कितना जगह चाहिए? तो हवन कुंड कभी कभी बनाता है तो कितना बड़ा, सब लोग यज्ञ करते, तो यज्ञ में फिर लकड़ी चाहिए, एक को स्वाहा करने के लिए दूध चाहिए, फूल नारियल, कितना कितना चाहिए एक यज्ञ के लिए। और यज्ञ कितने टाइम करना था, कितने मिनट? 2 दिन, कितने दिन? 1,000 वर्ष के लिए यज्ञ करना है, मतलब कितना चाहिए, टैंकर के टैंकर चाहिए। एक थोड़ा, एक आधा किलो हम लोग घी लेके यज्ञ करेंगे तो एक दिन में सहा हो जाता है, आधा घंटे में सहा हो जाता है आधा किलो घी। 1,000 वर्ष के लिए यज्ञ करना था, और इतने हवन कुंड और इतने ऋषि, आहा, गूंज उठा पूरा ब्रह्मांड नैमिषारण्य की भूमि में। और श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर भागवत सुना रहे परीक्षित जी को, परीक्षित बिल्कुल सामने बैठे थे, केवल वीरासन बैठे थे, वीरासन जानते हैं ना, जैसे वज्रासन, यस, आप लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने देखो सुंदर परीक्षित जी है ना आसन, सब ऋषि मुनि बैठे थे पूरे, ये तो परीक्षित जी का वर्णन है। तो वहां पर ठीक बाजू में सुत गोस्वामी बैठे थे, परीक्षित जी बैठे थे उसके बाजू में, सुन रहे थे एक तेल धारावत, और से ही सारा स्टोर हो रहा था, सब याद था, एक एक अक्षर याद। और भागवत को सुन के परीक्षित जी भगवत धाम गए, सुखदेव जी अपने लीला विचरण के निकल गए, ऋषि सब अपने धाम गए, सुत गोस्वामी चलते 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 गंगा जी के हरिद्वार के बाजू में शुक्रताल जगह है, वहां से चलते चलते नैमिषारण्य में पहुंचे जहां पर ये यज्ञ हो रहा है। ऐसे ही सूत गोस्वामी को आते हुए देखा सब ऋषियों ने, तो सब खड़े हो गए, क्योंकि सूत गोस्वामी भी आयु में बहुत छोटे थे, लेकिन उनको पता था कि ये उग्र सभा का पुत्र है, और उग्र सभा इनका नाम है ये रोमहर्षण का, और रोमहर्षण सूत कथा कहने में बड़े प्रवीण थे, उस्ताद, वेद पुराण इतिहास सब रोमहर्षण जानते थे, और वही कहां कथा करते थे, उसी नैमिषारण्य, और सब ऋषि लोग सुनते थे। किस समय की ये बात है? द्वापर युग, रोमहर्षण जब कथा करते थे द्वापर युग। और बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते एक बार नैमिषारण्य में आए, सभा भरी हुई थी, रोमहर्षण जी भागवत की व्याख्या कर रहे थे, बलराम जी जैसे एंटर हुए तो सब लोग पहचान गए कि ये अनंत शेष के अवधू जी महाराज है, भगवान है, खड़े हो गए। लेकिन सुत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण जी कथा कर रहे हैं, वो आया हुआ है। बलराम जी सीधा उस आसन के पास गए, घास का एक यहाँ कपोल पर स्पर्श किए, वहीं पर उसको रावत कहते कहते, ये कोई मृत्यु नहीं है, उद्धार है। तो सब ऋषि रोने लगे, अरे आपने ये क्या कर दिया, ये हमको कथा कहते थे। तो बलराम जी, ये सब ऋषियों को पता था, और उन्होंने देखा कि ये वही है आ रहा है, तो सब ने यज्ञ बन करके उसको सूत गादी दिया, सूत गद्दी वहां पर है, बड़ा टेकरा जैसा जगह, वही सूत गोस्वामी को आसन दिया गया। और सौनक ऋषि जो भृगु वंशी थे, भृगु के पुत्र है शुनक, और उनके पुत्र थे सौनक, तो कौन है ऋषि नाम, वो हम गीता में भगवान कहते हैं विष्णु की छाती में, जैसे भृगु के पुत्र के सौनक ज्ञानी थे, विद्वान थे, कृष्ण के प्रेमी, और उन्होंने सब ऋषियों का लीडरशिप संभाला, सब ऋषियों का क्या संभाला, क्योंकि प्रश्न केवल सौनक जी करेंगे, सब ऋषि करेंगे माय क्वेश्चन, तो 88,000 थे तो भागवत कथा ही नहीं होगा। तो सब ने निर्णय किया कि हमारा ये जो कथा होगा उस कथा के विषय में जो भी पूछना होगा, कभी कभी शौनक जी पूछते हुए कहते कि ये पूछ रहा हूँ बराबर है सबको, तो हाँ लोग सब बोलते थे एक साथ, 9% सब प्रश्न तो पूछते थे सूत गोस्वामी का, किसके पुत्र है रोमहर्षण का। सूत गोस्वामी का मूल नाम क्या कहा, श्रुति दर थे, बलराम जी की कृपा पात्र थे और सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्ट सातों दिन भागवत सुन के, ऐसा नहीं कि भागवत सुन के अकेले आए थे, भागवत सुन के सुखदेव गोस्वामी चलते बने तो सूत गोस्वामी भी उनके पीछे पीछे, तो कई दिन वन में साथ में वे लोग रहे चल रहे थे। बहुत भागवत के अलावा भी बहुत रहस्यमय बातें उनको सुनने मिली, तो के संग में का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवत के बाद भी उनको सुखदेव जी का संग मिला और उनके मुख से भगवत की कथा सुना रहे हैं। तभी श्री वेदव्यास जी को नारद जी ने भागवत की प्रेरणा दी और नारद जी की बात को रखकर भगवान के अवतार श्री वेदव्यास जी बद्री का आश्रम में गए, समाधि में श्रीमद् भागवत की रचना की, उनको भगवान के दर्शन हुए साक्षात और भगवान की माया के भी दर्शन हुए, और उसके बाद उन्होंने वेदों का चार विभाग कर दिया, रुक साम अजू और अथर्व, एक एक शिष्य को पहल जैमिनी वैशंपायन अंगीरा अथर्व आदि ऋषियों को महाभारत और सब वेद भी पढ़ा दिए, और अंतिम जब ये भागवत उन्होंने लिखा तो भागवत समाधि में स्थिर किया अपने चित्त में, लिखा नहीं सॉरी प्रकट किया, और उसके बाद उन्होंने आंखें खोली तो देखा पूरे विश्व में दृष्टि घुमाते हुए अपने शिष्य को देखा, देखा कि ये भागवत में किसको सुनाऊं, कोई भी शिष्य भागवत कथा धारण कर सके, गुरु शिष्य को जानते हैं ना, जैसे बेटे को जानता है कि ये कितना, गुरु जानते हैं चेला लोगों को, ये चेला देखा कोई नहीं काम करेगा, तब उन्होंने फिर द्वारकाधीश कृष्ण, ये द्वापर के एंड की लीला है ना, द्वापर के अंतिम और कलयुग का प्रारंभ, पुनः भगवान कृष्ण का स्मरण किया, तब हुए तपस्या किए बहुत बद्री का आश्रम में, बहुत वर्षों तक तपस्या किए भागवत के बाद भी, भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि कोई इच्छा नहीं है लेकिन ये अनमोल धरोहर श्रीमद् भागवत जो आपका स्वरूप है मुझे पृथ्वी के जगत के जीवों के लिए प्रकाशित करना है, लेकिन दीजिए जो भागवत को ग्रहण कर सके। संत लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का जो शुक है वो पट है, जो राधा कृष्ण की नित्य लीला में स्थिर है वही इस कलयुग में प्रकट हुए सुखदेव गोस्वामी बनकर, जो वास्तव पूर्ण रूप से जानते थे, कैसे प्रकट हुए उनकी कथा भी पुराणों में है, भगवान शंकर उदर में गए, शंकर जी ने त्रिशूल पीछे दोहराया, भगवत शिव जी से सुन चुके थे, ये पृथ्वी पर भागवत में सुखदेव जी कैसे आए, ये बड़ी सुंदर लीला, और व्यास देव की पत्नी वीटिका के मुख में अजर अमर हो गए थे, क्यों अजर अमर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भागवत पहले ही वेद व्यास सुना है, उसके पहले ही उन्होंने पक्षी रूप में और उसके पहले ही सब जानते थे, शुक ही थे तत्व से, समय भगवत ले लिया भगवान की लीला इच्छा का वर्णन है कि 12 वर्ष तक भगवान वेद व्यास अंदर से बात भी करते थे, गुदर से बात करते थे, हम बाहर आएंगे तो भगवान की माया हमको पकड़ लेगी, फिर भगवान कृष्ण को प्रकट करा के वेदव्यास जी ने गारंटी दिया तेरी माया है और तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, माया के बंधन से मुक्त होने का वचन कृष्ण से पहले प्राप्त करके फिर जगत में आए सुखदेव, और आते ही 12 वर्ष के थे और लगते थे 16 वर्ष के, ऐसा होता ना कोई लगता बड़ा होते ही सीधा चलते दिए चलते लगे, यम प्रवंजन तनुपेत तमपेत कृत्य, कोई संस्कार नहीं, कोई विधि नहीं, कोई पिता माता उवा वाव कुछ नहीं, और इन्होंने वासुदेव जी पीछे पुत्रे थी रुको रुको, और ये कहाँ रुकने वाले, क्यों, क्योंकि उनको माया को, माया मतलब कौन, पिता क्या पुरुष क्या घर क्या शरीर, इनसे परे थे, केवल आत्मा में ही उनका मन लगा, अंश हूँ कृष्ण परमात्मा का आत्मा हूँ, आत्मा सच्चिदानंद है, कृष्ण भी सच्चिदानंद है, परमात्मा भी, और उस परमात्मा से मिलना, उनका चिंतन करना, इससे परे वो कुछ नहीं जानते, इसलिए उनको आत्मा राम कहते। व्यास जी को फिर संकट हुआ कि जिसके लिए इतना तपस्या किया भागवत सुनाने के लिए, वो चलते जा रहा, सुन ही नहीं। ये कथा जब सुनाई सुत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव जी की नैमिषारण्य में, तब जाके सौनक जी ने एक प्रश्न पूछा, ब्रह्म में स्थित जिसकी बुद्धि ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहाँ चले गए? कहीं नहीं, बस वन में विचरण करके समाधि में बैठे रहते, कहीं कुछ बोलना नहीं, कहीं किसी से बात करना नहीं, केवल कृष्ण लीला चिंतन में लगे रहते, यही, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। तब वेदव्यास जी ने बाद में उनको वापस बुलाया और भागवत पढ़ाया, ये भागवत मैंने उस सुखदेव जी से सुना और यही भागवत जगत के जीवों के दुख आप मिटाएगा, भगवत प्रेम दिलाएगा और भगवत के धाम को ले जाकर जीव को जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला देगा, ऐसा भागवत मैं आपको कहने जा रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? सुत गोस्वामी। तब शौनक जी ने कहा, रुको रुको रुको, दस्य पुत्र, आप जिसकी बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, वो तो निर्विकल्पक थे। निर्विकल्प मतलब किसी से बात नहीं करते थे, किसी का नहीं सुनते, आपने ही कहा। और दूसरी बात कि वो एकांतमति, एकांत को पसंद करते थे, कहीं पर भी बैठते नहीं थे, चलते रहते थे। सर्वतो निरतो मुनि, जो हमेशा निवृत्त रहते थे और हमेशा मनन चिंतन में लगे रहते थे, ऐसे सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया कैसे? क्योंकि भागवत पढ़ने के लिए तो घंटों दिनों के दिन बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ये तो बैठने वाले सुनने वाले थे नहीं, बात भी नहीं करते थे, जानते भी नहीं थे, गुरु भी मानते भी नहीं थे, पिता है गुरु है कुछ नहीं, तो उन्होंने भागवत ग्रहण कैसे किया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है शौनक जी के द्वारा। ये आत्मा में जिनका मन लगा है, एक नंबर के जो मुनि है, ग्रंथि से जो निर्मुक्त है, ऐसे व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा रूपी गंगा, ये श्रीमद् भागवतम को सुने और पढ़े कैसे? तब इसके उत्तर में ये श्लोक बोला जा रहा है। सुत गोस्वामी कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। सुनो हे शौनक, कृष्ण के हरि के गुण ऐसे हैं कि कोई भी हो उसको सुनता है तो फिर बार बार, चाहे फिर कितना कामी हो, कितना ज्ञानी हो, कि कुछ भी हो, कृष्ण की कथा में एक अद्भुत रस है और कृष्ण के गुण नित्य नित्य नवीन नवीन होते रहते हैं। तो ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति भी कृष्ण की कथा सुन, इसमें गुण किसका है? कृष्ण का। उनकी ही ऐसी है, उनकी कथा में रस ही ऐसा है और उनका स्वभाव और उनकी शक्ति और उनका ज्ञान एकदम अलौकिक अद्भुत है, दिव्य है, इसलिए ऐसे भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए बड़े बड़े आत्माराम बैठते हैं। और जब समाधि में बैठे रहते थे या व्यास जी ने अपने भागवत के श्लोकों को सिखाया उस शिष्यों को और उन्होंने कहा कि जहां सुखदेव घूमता है वहीं पर जाकर गाओ, है ना, गुण था वो। सुत गोस्वामी ये कथा कह रहे हैं अपने गुरु सुखदेव जी के विषय में, और सुखदेव जी के विषय में आपने सुना है वो चले गए थे वन में, लेकिन व्यास जी ने भागवत के 18,000 श्लोक हैं उसमें से मुख्य कुछ श्लोकों को अपने चेले लोगों को क्या किया, रटाया, जैसे तोते को रटाते हैं ना, याद करा दिया, और याद करा के एक सेवा दी कि सुखदेव जहां बैठता है या चलता है उसके आसपास में इसको, उनमें से उन श्लोकों में क्या था, भगवान के गुण थे, दयाधैर्य का गुण, कृष्ण में अलग अलग अनंत गुण है, उनमें से कुछ गुण उस श्लोक में प्रकट होते थे, दया का गुण, उद्धव जी के द्वारा जो बोला गया श्लोक है भागवतम के दूसरे स्कंद के 34वें श्लोकों में, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 34 ऐसे है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम हंसया पायदत्त साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम दतन्या पादयालु शरणम रजेम। ये श्लोक सुखदेव जी ने सुना तो आंखें खुल गई, क्या वर्णन हो रहा है, देख रहे थे कुछ कुछ ऋषि लोग गा रहे हैं ये श्लोक को, इस श्लोक का अर्थ सुखदेव जी तो तुरंत समझ गए कि जो पूतना विष स्तन में लगाकर कृष्ण को मारने गई और ऐसी हत्यारण पापिन दुराचारिणी उल्टा आदि असुरी स्त्री को भी भगवान कृष्ण ने माता बना दिया। ये बड़ा कोई मारने आए और इसकी कोई पूजा करेगा? भगवान कृष्ण का दया का गुण तो देखो कि जो उसको मारने गया है विष लगाकर उसका भगवान ने कम बाद इससे बड़ा दयालु दुनिया में और कौन होगा। ये जब सुखदेव जी ने सुना कि इतना भी दया, बड़े चार पांच बजे संध्या बेला के समय में गैया को लेकर वृंदावन से लज, आंखों में भी रज लगी हुई है और बंसी बजा रहे हैं, सखाओं के बीच में है, पीछे गैया चल रही है, आगे गैया सब जगह, और भगवान अंदर मुरली बजा रहे हैं। इस सौंदर्य का वर्णन जब किया, बरहा पीडम नटवर और मुकुट धारण किए है, कानों में करेण का फूल लगाया, विजयंती माला धारण किए हुए है, तो वर्णन जब किया तो शुद्ध कौन है, ये कहां लिखा है इस विषय में? तो सब शिष्य लोग कहे कि ये तो भागवत में लिखा है। भागवत किसने लिखा है? अरे व्यास देव, अरे व्यास देव तो मेरा पिता है। चलो चलो, अब एक दो श्लोक में इतना गुण है तो गए उसके पास, क्योंकि कृष्ण के गुण इनका सौंदर्य देखा तो अद्भुत था और उनकी दया, क्योंकि हर व्यक्ति सौंदर्य होता है लेकिन दया नहीं होती, दया रूप होता है तो बल नहीं होता, बल होता है तो ज्ञान नहीं होता है ना। सब गुण और सनातन रूप में होते नहीं है जीवों में या देवताओं में, भगवान की सत्ता है। भगवान भगदेव गोस्वामी आए, वेद व्यास जी के पूरा श्लोकों का अध्ययन किया, स्वयं दूसरे अध्याय में जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कहते थे पूरा भागवत अध्ययन किया सुखदेव जी का, तो ये वर्णन है। इसीलिए शौनक जी पूछ रहे हैं कि कैसे इन्होंने भागवत, तो ये अंदर की कथा है, तो इस कथा को तो शुद्ध गोस्वामी नहीं कह रहे है लेकिन पूरे ऋषि समाज को साथ ले आराम। अभी देखिए, कोई माया नहीं थी, कोई ममत्व नहीं, कोई मोह नहीं, और ऐसे ब्रह्म में जिनका चित लगा है, आत्मा का व्यक्ति भी ब्रह्म समाधि तोड़कर भागवत सुनने के लिए, कई लोगों का वर्णन है, जैसे आपने सुना होगा सनकादिक मुनि ब्रह्मा जी के चार पुत्र, ये भी ऐसे ही थे, आत्मा राम थे। आत्मा मतलब आत्म के सात अर्थ है, अभी सात के 61 और 18 शब्द के 80 अर्थ होते हैं, ऐसे अर्थ है आत्मा। वर्णन सनातन गोस्वामी ने सामने, इस श्लोक में टोटल 11 शब्द है, आत्मा राम चर ग्रंथा अपि पूर्व 11 शब्द है, और 11 शब्द के 80 अर्थ है, जैसे आत्मा राम उनके 80 च उनके 80 अर्थ, तो प्रवचन है चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने सनातन गोस्वामी 18 बार व्याख्या की, एक ही श्लोक के 18 अर्थ बताए। और वही सनातन गोस्वामी के सामने जब चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, सनातन रामश्च मुनयो भागवत का श्लोक है, उसके ऊपर आपने जगन्नाथपुरी में बैठे बैठे सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने 18, तो मेरी इच्छा है कि उसी व्याख्या को आप हमको भी, ये श्लोक हमको भी समझाइए। तो चेतन कहते हैं कि अरे वो सार्वभौम भट्टाचार्य पागल हो गया, तो पागलपन में कुछ बोल दिया, ये ऐसा कहते हैं, तेहो बातुल आमी बातुल, क्योंकि बातुल मतलब बंगाली में जो मैड पागल होता है, गांडो गुजराती है ना, तो सेहो बातुल, बातुल मतलब वो ये दुनिया के जैसे पागल है ऐसे कृष्ण प्रेम में पागल, तो संसार से कुछ पागल मतलब क्या, सुने नहीं बोले नहीं है ना, पागल कहने, तो वैष्णव भगवान में मन लग जाता वो भी ऐसे ही हो जाते, कुछ करते नहीं वो तो वो जो संसार के काम धंधे वाले व्यवहार वाले लोग इनको पागल कहते हैं, पागल हो गया। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को पागल कहते हैं, मैं भी पागल था, तो कहते वो भी पागल था, मैं भी पागल, पागलपन में कुछ बोल दिया, अब तो मुझे वो याद नहीं है सब बातें, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी आप पूछ रहे हैं और आप सामने बैठे, अब एक भी अर्थ को छुआ नहीं उसने, उसका एक भी शब्द इसमें आया नहीं, और फिर से 61 प्रकार से सुनाया पूरी बातें, एक एक शब्द की लीला चैतन्य चरितामृत, अगर पूरा आत्मा राम एक ही श्लोक के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने जो बताए है वो पूरा वर्णन है। तो को अच्छी तरह समझना है तो हमें चैतन्य चरितामृत रूप में और तत्व के रूप में वर्णन, ये सरल व्याख्या जो की है वही मैं आपके सामने संक्षेप में कर, जैसे आत्मा राम हम सुन रहे हैं, राम शब्द का क्या अर्थ होता है, ये तो मैं प्रसंग बताया, आप अगर डिटेल में एक एक शब्द इसके ऊपर 8 दिन प्रवचन चलता है सभी मंदिरों में। जब ये श्लोक आता है पूरा एक शब्द के ऊपर आत्माराम के ऊपर 80 अर्थ बताने हैं तो एक दिन में क्लियर होगा ना। तो 11 शब्द तो कम से कम एक दिन में एक शब्द समझे आत्मा राम तो भी 11 दिन चाहिए। ऐसे 6 शब्द को, 6 शब्द का क्या अर्थ होता है? जोर देने के लिए भी होता है। तो हम अपनी अपनी तरह से इसको समझे, मतलब आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है शरीर, कभी विश्वात्मा कहते हैं परमात्मा को भी आत्मा, पूरे जगत के आत्मा वही है। और आत्मा राम शब्द का अर्थ जो आत्मा में ही रमण करे अर्थात उसी में आनंद। राम शब्द का अर्थ होता है सुख लेना, आनंद लेना। तो रखा आनंद सुख धाम है ना राम। हे दशरथ तुम्हारा ये जो लड़का है, वशिष्ठ जी ने कहा कि आपका जो ये पुत्र है वो सबको सुख देगा और सबको आनंद देगा, तो सुख और आनंद का ये धाम है इसलिए मैं इनका नाम राम रखता हूं। तो राम शब्द का अर्थ क्या होता है? सुख और आनंद ले। किसमें? आत्मा में। जो आत्मा में ही सुख ले, आत्मा में ही आनंद माने, आत्मा में ही रमण करे उसको। जैसे सुखदेव जी किसी से कुछ लेना देना नहीं, आत्मा में रमण करे, वैसे ही मैं आपके सामने बात रख रहा था सादिक मुनियों की। ये जो चतुष कुमार है वो भी किसी को कुछ नहीं गिनते थे ना मानते थे, केवल आत्मा में। ये आत्माराम मुनि है। और वो जब गए वैकुंठ में तो उस समय वर्णन है के तुलस मिल मिश्री भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में केसर अग्रु और आदि का लेप करके मिलान करके भगवान के चरणों में लगा। कृष्ण के चरणों में तुलसी का नित्य वास है और कृष्ण के चरणों में सुगंध भी है। भगवान के पूरे श्री अंग में सुगंध है क्योंकि सचिदानंद देह है ना। चैतन्य महाप्रभु के सामने कृष्ण आए थे तो चले अपवित्र हो गए, तब उन्होंने देखा कि कृष्ण अभी भी यही है क्योंकि मुझे केसर अग्रु तुलसी का सुगंध, और ये केवल विष्णु के शरीर में है, हम लोग के शरीर दुर्गंध है, सुगंध डालते वो भी बकवास है। भगवान के शरीर में सौंदर्य भी है और सुगंध भी है। और उस तुलसी के भगवान के दर्शन के लिए जब ये दोनों चार कुमार गए वैकुंठ में तो वर्णन है कि तो हो नहीं पाए पहले, जैसे ही नीचे दृष्टि गया तो उस भगवान जब एंटर हुए उसके सामने आए तो उनके शरीर के चरणों से तुलसी की सुगंध निकली, उनके कान नासिका में जब गई चारों कुमारों के, चारों कुमार वैष्णव बन गए। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम गाने लगे नाचने लगे। अब ये सब शीर मुनि गंभीर थे और ये लोग क्या करने लगे? भक्त हो गए, नाचने गाने लगे, क्योंकि कृष्ण के गुण ही ऐसे है कि आत्मा रामों की आत्मता समाधियां टूट फूट जाती है। कई प्रकार के वर्णन, एक संत प्रकाश काशी में रहते थे, 10,000 सन्यासियों के गुरु थे, सब वेदांतवादी सन्यासी, मतलब जानते ना शिखा सब हटा देते, केवल लाल कपड़ा और दंड धारण करते, बोलना नहीं कुछ नहीं, वेद पढ़ो वेद पढ़ो वेद पढ़ो समाधि। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब काशी में गए वो भी सन्यासी थे, क्या करते थे? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, नाचते थे और गाते थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा कि इतना युवान सन्यासी और इतना चैतन्य महाप्रभु के शरीर से भी तेज निकलता था, ईश्वर थे भगवान थे, तो उनके शरीर में भी तेज था और बड़ा ही मनमोहन सुंदर रूप था और 24 वर्ष के थे तो युवान थे एकदम। और ये सब सन्यासी तो खड़ा ही गया था पाकी आ था और चैतन्य महाप्रभु सब देख के मोहन, अरे इतनी कम उम्र में आश्चर्यमय थे, लेकिन ये पागल हो गया है, सन्यासी को चाहिए पड़े भागवत पुराण पर, जो भागवत पुराण को भी वो लोग नहीं माने, वेद केवल ऋग यजुर् साम यही पढ़ना चाहिए, ब्रह्मास्मि और ये वो सब, ये जरा पागलपन मत करो। कैसे सन्यासी हो? किससे यहाँ सन्यास लिया? आपके गुरु ने आपको ये क्या सिखाया? वेद पढ़ना चाहिए एक जगह पर बैठ कर, इस तरह रस्ते पर हरे कृष्णा पागल की तरह कर रहे, लेकिन फिर भी नम्र थे, महामंत्र जपो बस हो गया। वेद पढ़ने को नहीं सिखाया तुम्हारे गुरु ने? नहीं, वेद पढ़ने को नहीं सिखाया। क्यों? उन्होंने कहा कि गुरु मोरे मूर्ख जानी करीला शासन। मेरे गुरु ने मुझको देखा कि एक नंबर का ये मूर्ख है, वेद नहीं पढ़ सकता है, इसलिए मूर्ख देखा और वेद का अधिकार मुझे नहीं दिया, तो मुझे केवल मंत्र जपो, कोई बात नहीं, बैठ के जपो एक जगह। क्यों घूम रहे हो, नाच रहे हो? तुमने तुम्हारे गुरु ने कहा नहीं उसको? तो कहा एक जगह बैठना, लेकिन मेरे से एक जगह बैठा नहीं जाता। मैं महामंत्र जपता हूं तो मुझे नाचने की इच्छा होती है, गाने की इच्छा होती है। तुमने तुम्हारे गुरु को ये कहा कि नहीं? तो क्या हाँ, मैं मेरे मामले में कोई गुरु के गुरु के गुरु यही है, लेकिन बोल रहे ऐसे कि मैंने मेरे गुरु के पास जाकर कहा कि मुझसे रहा नहीं जाता है, महामंत्र जपता हूं तो नाचने की इच्छा होती है, आंखों से आंसू आ जाता है, रोने की इच्छा होती है और शरीर का पूरा भान अवस्था में जाती है, ऐसा मैं अपने गुरु को कहा। तो क्या कहा तुम्हारा गुरु उस समय? तो उन्होंने कहा कि तब तो तुम्हारा महामंत्र सफल हो गया, यही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है जो बैठ के जप रहे हैं उनको ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं नाचू गाऊ रोऊ, तो अभी वो अधूरे, तुम्हारा सफल हो गया, ऐसा कहा। तू मोरे मूर्ख जानी करीला शासन, वो मूर्ख समझ के मुझको जप दिए कहा था और मैंने जाकर कहा तो फिर उन्होंने कल हो गया, तुम्हें मंत्र की सिद्धि मिल गई, तब की ये बात है। इसको खत्म करते हैं। सत्य क्या है जानते हैं इस लीला में? प्रभु तो ईश्वर है, सब जानते, दिखाना चाहते थे कि कलयुग के लोग वेद देखेंगे भी नहीं, पढ़ने की बात छोड़ो, देखा है आप पढ़ने की क्या बात, तो ये वेद पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वेदों का जो सार है वो है भगवान की भक्ति, भगवान का ले तो वेद आ ही गया उसमें। कलयुग के जीवों का, कलयुग के जीवों को लक्ष्य में रह के अपने ऊपर से कह रहे थे कि मुझे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने की मेरे पास बुद्धि नहीं है, टाइम भी नहीं है, इसलिए भगवान मिल जाएंगे, जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे और आप लोग पढ़ते रहो, कुछ होगा नहीं, कोरे रहोगे। और ऐसा कहा चैतन्य महाप्रभु, कोई गुरु गुरु उसको कुछ नहीं कहे थे, ठीक है कल हमारे आश्रम में आना, 10,000 शिष्य बैठे है और बड़ी गादी पर प्रकाशानंद सरस्वती सन्यास हुए दूसरे दिन। चैतन्य महाप्रभु सरलता से जाकर जहाँ पर चप्पल रखे थे वहां पर बैठ गए, जबकि आज के दिन में इस सभा में सबसे आने वाला गेस्ट यह था, उनको पिला गुरु ने स्वयं निमंत्रण दिया था कि कल आप आना हमारी सभा। पूरी सभा में तेज हो गया, आनंद होने लगा, तो देखे कि कहाँ से प्रकाश कहाँ से आ रहा, जैसे होता है ना लाइट कहाँ है, लैंप के इधर, तो देखे कि चैतन्य महाप्रभु बैठे, तो ये कल वाला नाचने वाला रस्ते पर यही था, वेद पढ़ा रहे थे, वेद को बंद किए और जाकर नहीं है, आप आइए आसन पर बिठाया चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से कल बात हुई और आज उनको छू दिए, तो ये जो गुरु थे ब्रह्म वेद आत्मा आत्मा करते थे, वो कृष्णा कृष्णा करने लगे। महाप्रभु तो करते ही है कृष्ण कृष्ण, तो उनको तो बैठना है नहीं, वो तो दोनों बाहु खड़े होके हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, तो प्रकाशानंद सरस्वती भी हाथ उठाए, तो कभी हाथ नहीं उठाए थे ऐसे, वही बैठे थे अभी चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, हाथ उठाए तो इन्हें भी हाथ, तो इनको देख के चेले लोग भी गुरु हाथ ऊपर कर, कुछ लोग आधे लोग किए, 10,000 में से 5,000 किए, ऐसे देखा देखी किए, और ये कुछ हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पूरा मंत्र तो आता नहीं है सबको, अभी पहली बार सुन रहे हैं, तो हरे को कृष्ण को घरे न, तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से मंत्र बोले हाथ उठा कर, तो कभी बोले तो पीछे आने वाले बोलो बोलो 10,000, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा 10,000 लोग हरे कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए, खड़े होके दोनों हाथ उठा लिए हरे कृष्ण, वो लोग भी खड़े हो, गुरु खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए, खड़े होकर जोरदार 10,000 लोग, तब तो चैतन्य महाप्रभु के पास से आ गए वहां मृदंग करताल माइक स्पीकर सब लोग जोरदार उदंड के लिए, वेद पढ़ने वाले अब कीर्तन करने, कल अभी शिक्षा दे रहे थे कि ऐसा मत करो, चैतन्य महाप्रभु शिष्य को नचा दिया चैतन्य, सब सन्यासी नहीं तो बोलते भी नहीं थे, चुप कौश गड़ी दे ऐसी, मतलब कोई ना बोलो है क्या, तो तरह देख पड़ी बदा प्रेम थी नाचवा में, 10,000 शिष्य बदा जो है ना चोटली वाला जितला से महाप्रभु ना पार्षद हो, आ लोग चोटली नो रखता चोटली वजह ना। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम में और उनकी कथा में एक भी देखा जा रहा है कि क्रिश्चियन लोग, श्री प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार करते थे
तो सब बाइबल की बात उनको भी वहाँ के लोग करते कि हमारे ऊपर जी कहते थे कि इसराइल बट जीस इज नॉट ए गॉड। तो मान लीजिए जहाँ जिस देश में है और वो व्यक्ति को वो कह रहा है कि हमारे भगवंत प्रभुपाद जी सीधा, तो क्यों उसको इतना विश्वास था? उन्हें कहा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट इन बाइबल, शो योर इन बाइबल, तुम्हें आपके ग्रंथ बाइबल में ही लिखा है कि वो भगवान नहीं है। तो कहा लिखा है? तो उन्होंने स्वयं जीसस ने लिखा है कि आई एम सन ऑफ, मैं भगवान का पुत्र हूँ। पढ़ेगा उन्होंने बाइबल में ही लिखा है, स्वयं जीसस ने, यीशु क्रिस्ट ने लिखा है, मैं भगवान का पुत्र हूँ। अब हु इज गॉड? प्रभुपाद जी, ये तो भगवान का पुत्र है, भगवान कौन है? बोलपान कौन है? कृष्णा इज गॉड। कृष्ण का महामंत्र गाते थे, इन लोग को स्वाभाविक आनंद आता और बिल्कुल निस्वार्थ बोलते थे, तो अपना पूरा बाइबल फिलोसम था पूरा एंड कर दिए प्रभुपाद और सब वैष्णव जन प्राय जो भी मिलता था सुनता, और कोई अपनी अहंता जड़ता के कारण नहीं मानता था लेकिन हृदय से मानता था। ऐसे भी हम भी देखते हैं, प्रचार करते हैं तो कुछ गुजराती लोग भी પોતાનું ગુનું કઈક હોય તો માને નહી, પણ એમ થાય કે હા સુધાર છે, પણ હલવાઈ જાય કઈ કરી નહીં, આ મહિનો કે આ મહિનો, પણ એનો પગ તો પડી જાય શું થાય, અને આ રોય તો ક્યારેક હવે આવી નહીં કે પણ હવે એ ખળવળે છે, પડખા ફરે ગુજરાતમાં, કે નહીં કરે તો મરશે, શું કરશે? એ તો જો આ સંન્યાસી હોય બધું બંધ કરો કે ભેદ, ભેદનો સાર છે, કારણ કે કૃષ્ણ ગીતામાં કહે 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોક, ભેદો કા સાર હે મુજે જાનના મુજે સમજના ઓર મેરે પાસ, ભેદ મેને બનાયા, કૃષ્ણ ને તો ભેદ બનાયા, ઓર ક્યું બનાયા હે મુજે જીવ પુનઃ પ્રાપ્ત હો જાય ઇસલિયે, ઓર યે વેદાંત કા ક્યા, વેદવાદીઓ કા ક્યા, કુછ નહીં, યે ભેદો કા અંત સાર હે કે યે આત્મા રામ જો હે ઇતને ભી, લેકિન કૃષ્ણ હરિ કે ગુણ હી એસે હે हैं और कृष्ण के गुण को कई उदाहरण है इसके, आत्मा राम के, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि देवर्षि सब ब्रह्म में भी आत्मा में भी सुख है, लेकिन भगवान की एक भक्ति रस समुद्र है, और ये ब्रह्मानंद आत्मा राम का जो सुख है वो तो एक गाय के खुर से बना होता ना छोटा सुख, जिसको मिल जाए फिर वो क्या देखे, केवल आत्मा राम थे फिर भी सुखदेव गोस्वामी का ही उत्तर दिया जा रहा है, इनमें भले बैठे थे लेकिन कृष्ण के गुण। कल परसों ये श्लोक और चन्य चरितामृत से पढ़ा गया है कि एक प्रसिद्ध नाम है हरि, क्या नाम है, श्लोक में आया है गुणो हरि, हरि शब्द का क्या अर्थ होता है, बहुत अर्थ होते है, हरि शब्द के भी 80 अर्थ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एंड में कहा कि हरि शब्द अर्थ होते हैं लेकिन उसमें से दो मुख्य है, हरि शब्द के बहुत अर्थ है लेकिन दो मुख्य है, हरि शब्द का एक मुख्य अर्थ है, हरि शब्द का मुख्य अर्थ है वो गुण कैसे हरते हैं सब अमंगल, मार पीट के नहीं, अपना प्रेम देकर, प्रेम दिया हरे, लीला नाम प्रसाद का इतना सुख देते हैं जीव को, और उसका सुख देके मन चुरा लेते, हरि हर लेते हैं, है ना, कृष्ण के दुख दुख सब किस में होता है, मन में होता है, वस्तु जो है वही रहेगी, नष्ट हो नष्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं रही या आई उसके लिए सुख दुख का अनुभव कौन करता है, मन करता है, और कृष्ण उसी शब्द के दो अर्थ है, दुख प्रेम देकर मन भी हर ले, लोगों के लिए तर शब्द है भक्ति, अहेतु के हमें भी भक्ति है लेकिन हेतु कोई नहीं होना चाहिए, हेतु मतलब जानते हैं, कोई कारण नहीं चाहिए, इसलिए आम मले तो करीश, साइकिल मले तो, अहेतु की निष्काम भक्ति की महिमा है, काम है ही नहीं, सौदा है, बिजनेस है, मतलब जिसमें कोई काम केवल कृष्ण की कामना है, प्रेम तो अहेतु की कर, पूरे विश्व में अहेतु की भक्ति सब जगह होती है लेकिन मिश्रित भक्ति होती, और अच्छी तरह करने से लिए लोग भगवान के मंदिर में जाते, वैराग्य को प्राप्त होना चाहिए, मन संसार से विषयों से भोगों से ऊपर उठना चाहिए, तब भक्ति की अमृत छाड़ी विष मांगे, भक्ति के अमृत को छोड़कर संसार के विषयों का शुद्ध भक्ति करना है, गोपियों ने की है, जो ब्रजवासियों ने की, और ये कैसे होगी, शुद्ध केवल शुद्ध भक्तों के संग में होगा, क्या आप प्रवचन सुन रहे हैं, जिसका आप कर रहे हैं, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, वो भक्त ही अगर शुद्ध नहीं है, उसमें ही कामना भरी हुई है, उसमें ही प्रतिष्ठा का लोभ है, वो भी धन का लोभ ही, और ऐसे लोग उनमें ही नहीं हो हमको क्या देंगे, समझ रहे हैं, शुद्ध विषयों में पड़ा है तो आपको शुद्ध कैसे बना सकता, अपना लोग दृष्टांत देते हैं कि एक राजा भागवत करा रहा। एक संत को बुलाया, बोला भागवत सुनाओगे? बोले भागवत तो हमारा धंधा है, धर्म है, सुना देंगे। क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे भागवत सच्चा सुनाओगे ना, मेरा आधा राज्य दक्षिणा है। आधा राज्य मतलब आप आधा देते तो मैं 3 दिन में सुना सकता हूँ। बोले नहीं, 7 दिन का तो नियम है, 7 दिन सुना। 7 दिन बड़े प्रेम से मन लगा के। कई लोग हमारे एक प्रभु जी बम्बई में कहते थे, प्रभु जी कहा तो कहा जाए कि एक माला पूरी करोगे आपको 10,000 दिया जाएगा, सामने रखो, कहीं मन नहीं जाएगा। हरे कृष्ण, मन तो लगा, कुछ दिखाओ, है ना, कुछ चाहिए मन को, जो चाहिए। इसको भी बोला आधा राज्य है तो बड़ा कथा कहा उन्होंने, सब कहीं कहीं से पूरा कथा खत्म होते ही पूर्णा होती हुआ, फिर कहा कि लाओ आधा राज्य, कुछ नहीं देंगे। क्यों? कि भागवत सुनने से संसार में वैराग्य आ जाता है। मुझ में वैराग्य आया, वैराग्य नहीं आया तो दूंगा कहां से? वैराग्य आएगा तो दूंगा। ऐसा थोड़ी आपने कहा था, आपने कहा था कि आधा राज्य देंगे। अभी क्रोध आ गया उसमें, क्योंकि देखो अभी भागवत ने कहा रहा था कि क्रोध नहीं करना, खुद ऐसा नहीं कहा था कि वैराग्य आएगा तो बोले दो। राजा ने कहा कि मैं सच कहता हूं कि आपको आधा राज्य दूंगा, लेकिन व्यक्ति कब देता है? जब उसको वैराग्य छोड़ने की, मुझे कुछ हुआ वैराग्य, मेरे को हुआ नहीं है इसलिए आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो क्रोध में हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, आपने बोला था, बोला था तो बोला था, क्या कर लेगा? ये तो राजा है, वो तो बेचारा पोथी मुश्किल से उठा रहा है, दम तो है नहीं, क्या कर लेंगे? नहीं देंगे, कर लेंगे क्या? हम आपको फिर से भागवत सुनाएंगे। हाँ वो सुना, वैराग्य होगा तो दूंगा। फिर से 7 दिन सुनाया, फिर भी इनको कोई वैरागी नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद वैरागी नहीं है, वो खुद धन के लिए भागवत कर रहा है, तो ये राजा में कहां से वैराग्य आएगा? और समझ रहे, बोलने वाला ही जब लोभी है तो उनके प्रवचनों से सामने वाले में वैराग्य कहां से आएगा? उल्टा उसमें जो है विषय भोग वासना, वही उसमें जाएगा। कुछ हुआ नहीं, बीजे वाकू भागवत पूर्व देगी, लाओ राज्य वैराग्य। एक फूटी कौड़ी कर, एक रुपया छोड़वा मन नहीं था तो तारो हमले क्या चीज है, कारण ये नहीं हटो दो करे। ऐसा है, कुछ होगा नहीं निश्चित ऐसे। इसलिए भक्तों ने शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, शुद्ध भक्तों से सुनेंगे, और शुद्ध भक्तों के संग में शुद्ध भक्ति जी की कृपा है कि शुद्ध कोई भी हो, जब तक वो कृष्ण का गुण कथा नहीं सुना है तब तक कुछ भी कर सुने तो व्यक्ति फिर भले माने या न माने, स्वीकार करे या न करे, लेकिन उनकी अंतरात्मा के कोने में कृष्ण टेढ़े बट जाते हैं, निकलते नहीं है। तो उनका ना प्रसाद खिचड़ी नहीं खाया है तब तक भले घूमता रहे, खा लिया है, सुन लिया है, तो फिर वो चाहे विश्व में कहीं भी रहे वो उसको याद तो आना है, दिमाग से या उनके मन से कृष्ण जाते हैं। नहीं सुना है कृष्ण के, और हमारे गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि आप कृष्ण के सत्य नहीं सुने हैं, इसलिए दुनिया में लोग दूसरा दूसरा उत्पटान। राम के विषय में सही सुनाया जाए, कोई कुछ करेगा ही नहीं इनकी भक्ति के अलावा, करने की जरूरत नहीं है। पाखंड अपने आप, सूर्य उगता है तो ये लाइट हो चाहे क्या क्या उनका रह जाएगा ही नहीं, ऊपर क्या है देखता है तो पता चलता है, सूर्य नहीं चाहता तो ना। ऐसे गीता सूर्य के समय है, अगर वो सामने आए तो फिर तेईस कान पूरे मानव तो अर्थ बताए क्या क्या है बताए। करके अमंगल को, अमंगल मतलब क्या, मान लीजिए पूछा जाए भगवान को भूलाए ऐसी कोई भी, जीव का मंगल क्या है? भगवान मंगल यही है कि जीव कृष्ण से या कृष्ण के चरणों को प्राप्त हो। जो भी स्पीड ब्रेकर अवरोध आते हैं, कहाँ लिखा है? कर्म पालन है ना, प्रूफ होना चाहिए ना, प्रमाण। हम जो भी बोलते हैं अपना मन का कुछ है नहीं, वेदों में, शास्त्रों में, भागवत राम भागवत जी में 121 पुराण ग्रंथ, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है इसका प्रमाण। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही मन में आया, वास्तविक है पुराने, दूसरे कुछ नए हो गए हैं। वेद में लिखा होना चाहिए कि ये कृष्ण भगवान आने से पहले ये सब वेद लिखे गए हैं, और आ जाता है उसमें ये घर में आएंगे, ये माता पिता कह दिया कि मैं सूरसेन के घर आऊंगा, कहना चाहिए सीधा भागवत में है मूल। ऐसे तो बहुत जगह है लेकिन दुनिया जिस जिस ग्रंथ जानती है भागवत को जानती है, तो में भी है लेकिन उपनिषद लोग जानते नहीं, तो भागवत में है। और एक जगह नहीं, 4 जगह पर भागवत में, महाभारत में 10 जगह पर, एक ही वर्णन चैतन्य महाप्रभु के, वही उसके लिए दूसरी कथा हो, दूसरे पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, सब कृष्ण, क्योंकि व्यास जी तो त्रिकालज्ञ थे, सब जान लिए नहीं, उसको पूछना चाहिए कहाँ लिखा है भगवत जी में। आपको चाहिए तो एक पुस्तक मिलता है चैतन्य महापुराण श्लोक पुराण। भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग क्या है जानते हैं? राजसूय सभा। और राजसूय सभा में भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भीष्म ने भगवान को जब प्रथम पूजा हुई तब विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ जानते ना, विष्णु सहस्त्र नाम, उस विष्णु सहस्त्र नाम में 10 नाम चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई है, तो उनके 10 नाम है वहां, महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। और वो सब श्लोक चाहिए तो आपको मिलेंगे। प्रश्न नहीं है आप लोगों का? जा रहा है तब तक एक छोटा भजन गाए।